कामक्रोधस्तथा लोभ तस्मादेतत्रयं चये। भगवान भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहते हैं, ये तीन प्रकार का नरकों का द्रव्य है। कहते कैसा है आत्मना नाशनम, इसका खुद का पतन करने वाले तीन द्रव्य हैं। कौन से कहते काम क्रोध तथा लोभ। काम क्रोध और लोभ पतन करने वाले नरकों के दरवाजे। तस्मादेतत्रयम् त्यजेत्, इस वास्ते इन तीनों का त्याग करना चाहिए। एतैर् विमुक्तः कामधेय तमो द्वारे स्त्रीभिर् नरः। ये जो तीन तमोद्वार है, पूर्व श्लोक में तो नरकों के द्वार कहे, जहाँ अंधकार के द्वार कहे तमोद्वार स्त्री भेद नरक। इन तीनों से जो रहित होता है, मुक्त होकर के आत्मा आत्मन शेषी आचरण अपने श्रेय का आचरण करता है, ततो जाति परां गति, उससे परम गति को प्राप्त होता है। तो काम क्रोध लोभ ये नरकों के द्रव्य है। अगर एक तमोद्वार बता तमोगुण के द्रव्य है, तो तम नाम प्रकृति का माया का है और वो अंधेरा है, और वो तम है नरकस्तम उन्नाहो। एकादश स्कंद में आया है नरक नाम किसका है, तम उन्नाहो। जब तमोगुण बढ़ता है तब समझना चाहिए कि नरक आ गया। सत्व गुण बढ़ता है तब तो महाराज मुक्ति का दरवाजा खुलता है। रजोगुण संसार आ गया, तम है वो नरकस्तम उन्ना। अब ये बात बहुत प्रसिद्ध है, लोग जानते भी हैं। वे काम क्रोध लोभ अच्छे नहीं। इसमें एक मार्मिक बात बतावे, भाई बहन ध्यान देकर के सुने। हमारे जो संसार का संबंध है, दुखों के साथ संबंध है, बार बार जन्मना मरना और पड़ता है, आफत भोगनी पड़ती है, उसमें खास कारण क्या है? तो ये नरकों के द्रव्यों के साथ संबंध, तो ये देवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता आसुरी प्रकृति के खास तीन ये अवगुण है। इनसे फिर आगे संपत्ति अब सब आ जाती है। तो नाशवान पदार्थों के साथ संबंध हमारा इनसे जुड़ता है। विशेष ध्यान देने की बात कहता हूं। लोग समझ रहे हैं कि साधु हो गया तो ये तो त्यागी हो गया, अथवा कोई गृहस्थ का काम न करके एकांत रहकर भजन ध्यान करता है तो वो समझता है कि ये तो त्यागी हो गया। और बात ठीक भी है, परंतु असली त्याग तब होगा जब इनके साथ में संबंध विच्छेद हो जाए। बाहर का संबंध है ये खास अनर्थ का हेतु नहीं है। साधु हो जाए तो कहाँ जाएगा, कहीं न दुनिया में ही रहेगा, कहाँ जाएगा, क्या आकाश पर चल जाएगा? भीतर में जो संबंध है इसका, खास बंधन जिससे होता है, वो काम क्रोध लोभ से होता है। ये काम और क्रोध और लोभ ये तीन अवगुण कहलाते हैं, नरकों के द्रव्य कहलाते हैं। इनका भी सूक्ष्म रूप क्या है, उत्पत्ति विनाश वाले पदार्थों को जो अच्छा समझते हैं, प्रिय समझते हैं, आकर्षक समझते हैं, मन हमारा उधर जाता है, बस यही नरकों का द्रव्य है। दो बात है इसमें, एक तो सांसारिक सुख भोग ले और एक सांसारिक पदार्थों का संग्रह कर ले, दो में लोग लगे हुए हैं। इस दो में लगे हुए की परमात्मा के निश्चय में अटल वृत्ति नहीं होती। दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में आया है कि भोगे ईश्वरीय प्रसक्ता नाम पर्याप्त चेतसाम, भोग और ऐश्वर्य में जो प्रसक्त है, अत्यंत आसक्त है, और वो जो पुष्पित वाणी है जिससे मन अपृत हो गया है, उनका परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय भी नहीं होता। उनके हृदय में व्यवसायत्मक बुद्धि या निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती, क्योंकि आसक्ति तो अभी भोग और ऐश्वर्य में सांसारिक पदार्थों का संग्रह करना, सुख भोगना, ये तो अभी वर्तमान में है और चित्त पर असर हो गया। अगर ही भोग मिलेंगे, सुख मिलेगा, या मिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवचन जबिवस्थित वेद वाद रता पार्थ नहंदस्ती दिवादना कामात्मान स्वर्ग परा, वे स्वर्ग ही सबसे बढ़िया मानते हैं और कामात्मा हो गए, वे काम स्वरूप ही हो गए। स्वर्ग कोई परायण मानते, बड़ा भारी भोग अगर ही मिलेगा, सुख मिलेगा। तो अभी भी भोगों में और संग्रह में रचे पचे हैं और अगर भी स्वर्ग में जाएंगे, सुख भोगेंगे, आराम लेंगे, वह धन संपत्ति वैभव खूब मिलेगा, बड़ा सुख मिलेगा, सुख भोगेंगे। तो वर्तमान में और भविष्य में दोनों जगह ही उन्होंने बंधन बांध लिया, तो नरकों का द्रव्यज्ञा क्या है? ये जो नाशवान पदार्थों को जो महत्व दिया है ना मन में, ये महत्व ही बांधने वाला है। तो काम का तो अर्थ हुआ भोग भोगना और लोभ का अर्थ हुआ संग्रह करना, खूब संग्रह कर रहे हैं और भोग भोग रहे हैं। ये पता नहीं है कि ये संग्रह कितना दिन काम आवेगा। पदार्थों का, रुपयों का संग्रह करते हैं, ये संग्रह हमारे कितना काम आवेगा। पहले तो ये वृत्ति रहती है कि इनसे हम सुख लेंगे, जीवेंगे, निर्वाह होगा, परिवार का सबका पालन पोषण करेंगे, ऐसा विचार करके प्रवृत्त होते हैं। पर धन में एक ऐसी ही विशेषता है कि प्रवृत्त होने के बाद फिर लोभ बढ़ता है। तो लोभ बढ़ता है तो लोभ बढ़ने पर प्रवृत्ति अगाड़ी और बढ़ती, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकारी, जैसे धन मिलता है ऐसे लोभ और बढ़ता है, जैसे लोभ बढ़ता है चेष्टा करता है धन मिलता है तो फिर लोभ बढ़ता है। तो अपने पीढ़ियों तक खावे इतना भी धन कमा लेते हैं, फिर भी धन कमाने में ही लग जाते हैं, रात दिन उस धुन में लग जाते हैं, भगत पर रोटी नहीं खा सकते, भगत पर नींद नहीं ले सकते, आराम नहीं ले सकते, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो भी धुन लगी रहती है कि धन इकट्ठा हो जाए। तो ये ख्याल नहीं होता है कि धन लेकर करेंगे क्या। आप क्षमा करेंगे भाई, मैं मेरी बात कहता हूं, आप क्षमा कर देंगे, पर तो मेरी घर की बात नहीं है, शास्त्रों की बात कहता हूं और यह कहता हूं बंबई में आकर के, ये बंबई के लायक बातें नहीं है। परंतु जब मेरे को बैठा दिया तो भाई बात तो वही कही जाएगी मन में आवे, और वो कहता इसलिए हूं कि होश में थोड़े आप रहे, धन बेशक कमावे परंतु इतने बेहोश न हो जाए ना, तो वर्तमान में आप आराम ले सकते हैं और ना अगाड़ी आराम की बात सोच जिससे सुख मिलेगा, असली इस बात को सोच सकते हैं भोगों को भी भूल जाते हैं, संग्रह में इतने लग जाते हैं कि जो वक्त पर खाना पीना भी भूल जाते हैं, आराम करना भी भूल जाते हैं। अरे भाई, धन तो आराम के लिए है, सुख के लिए है, और सुख ही खत्म कर दिया तो धन किस लिए है? और पारमार्थिक बातों के लिए शरीर मिला था वो तो भूल ही गए। ये जो धन कमाने की रुचि है ना, ये रुचि थी परमात्मा का भजन करने की, वो लगा दी इधर। ऐसे ही भगवान में आकृष्ट होने की रुचि थी, वो लगा दी भोगों में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण का वर्णन करके अंत में एक प्रार्थना करते हैं भगवान से, कहते काम है नारी प्यारी जिम, अरे लोभी है प्रिय जिमी दाम, ते मेरा गुनाथ निरंतर प्रिय लाग ही मोहि राम, प्रिय लाग हूँ मोहि राम। तो कहते हैं कामी नारी प्यारी जिम, जैसे कामी को स्त्री प्यारी लगती है, इसी अर्थ को हमारी बहन माताएं समझ ले कि जैसे पुरुष लगता है। तो कामे नारी प्यारी जिम लोभी प्रिय जिमी दाम, और लोभी को जैसे दाम प्यारे लगते हैं, पैसे प्यारे लगते हैं, रुपये प्यारे लगते हैं, सीवी रघुनाथ, वैसे इन दोनों जगह रघुनाथ और प्रिय लागो मुझे राम, रघुनाथ जी और राम मेरे को प्रिय लगे। तो दो इधर लिया, कामे नारी प्यारी जी में लोभी प्रिय जी में दाम, ये दो की जगह कहते हैं तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोई राम। तो अर्थ क्या हुआ, सांसारिक भोगों में मन जो खिंचता है, प्रियता है, वो प्रियता रो हमारे श्री रघुनाथ जी महाराज में हो जाए, राम जी में लग जाए। और कहते प्रिय लागू मुझे राम, राम का क्या अर्थ हुआ, कि राम का अर्थ हुआ नाम। जैसे दाम इकट्ठा करने का मन करता है, ऐसे नाम जपने का मन करे, राम 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 राम, मन लूट करके धन ले ले, ऐसी बढ़िया संग्रह कर ले। तो संग्रह करने के लिए तो भगवान का नाम, और मन आकृष्ट होने के लिए भगवान का स्वरूप, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। परंतु गोस्वामी जी महाराज बड़ी सावधानी से बोलते हैं, कामे नारी प्यारी जिम, जैसे अत्यंत आसक्त पुरुष को भोग प्यारे लगते हैं, तो कामे नारी प्यारी जिम और लोभी प्रिय जिमी दाम, जिमी जिमी का आया, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम, रघुनाथ जी और राम जी के लिए निरंतर शब्द लगाते हैं। पूर्वार्ध में निरंतर शब्द नहीं है, भोगी आदमी को भोग प्यारा लगता है, वो चाहे भाई हो चाहे बहन हो, तो वो जो भोग प्यारा लगता है वो हरदम नहीं लगता है, थोड़ी देर के लिए लगता है, थोड़ी देर के बाद में वो आकर्षण नहीं रहता। एक साधारण आप समझोगे जैसे भूख लगी है और बहुत बढ़िया भोजन मिल जाए, तो भोजन में आकर्षण होता है, प्रिय लगता है भोजन, परंतु वो भोजन का पहला ग्रास लेकर प्रियता जैसी होती है, वो ठीक ठीक ग्रास लेते चले जाओ, वो प्रियता कम होती चली जाएगी, और तृप्त होने के बाद में वो प्रियता नहीं रहेगी। और कोई परोस भी दे अच्छा नहीं लगेगा, और थोड़ा अधिक भी खा ले और कोई फिर अधिक परोस दे और कहीं खा ले, खा सकोगे नहीं, ज्यादा खा तो क्या हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी। अब प्रिय नहीं होगा तो भीतर का भी निकलने लगा, वो प्रियता नहीं रही। प्रत्येक भोग में यही बात है, उसमें निरंतर प्रियता नहीं रहती। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कामी को जैसे भोग प्यारे लगते हैं, ऐसे मेरे को रघुनाथ जी महाराज प्यारे लगे, तो वो प्रियता तो खत्म हो जाती है। इस वास्ते कहते हैं तिमि रघुनाथ निरंतर, ये अंतर न पड़ जाएगा, इस वास्ते निरंतर पद देते, प्रिय लागो मोहि राम, ऐसे मेरे को प्यारे लगे। तो वास्तव में भगवान में प्रेम लगता है, उसके लिए नारद जी महाराज कहते हैं प्रतिक्षणम वर्धमानम, भगवान का प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता है। ज्ञान होता है स्वरूप का, वो तो है ज्यों का त्यों रहता है, कभी उसमें कमी नहीं आती, परंतु रघुनाथ जी महाराज का प्रेम, भगवान श्री राम जी का प्रेम, श्री कृष्ण भगवान का प्रेम, वो प्रेम होता है तो प्रेम बढ़ता है, प्रतिक्षण वर्धमानम। इस बात के दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। श्री शंकराचार्य महाराज कहते हैं कि ये नंदलाला है ना, इसमें दिने दिने नवम नवम, दिन दिन प्रति नयापन दिखता है। इस बार संतों ने गाया आज अनूप बनी युगल सभी, आज अनूप बनी राधे श्याम की युगल सभी, आज अनूप बनी, आज तो अनुपम ही है, दूसरे देखो तो बस आज अनूप ही है, मानो जो देखो त्यों उसमें नवीनता ही नवीनता दिखती जा रहा है, प्रति क्षण वर्धमानम। कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें कि वो उसका बढ़ना बंद हो जाए, तो बढ़ता रहता है। ऐसे ही नाम का प्रेम लग जाता है, जिसके लगन लग जाती है नाम लेने की, तो नाम में रुचि ऐसी हो जाती है मानो लेता ही रहूं। संतों ने कहा है कि जीभ एक है क्या करूं, किरणों जीभ हो जाए तो सब जीभों से भगवान का नाम लूं। समय थोड़ा है 24 घंटा ही, अगर आधा अधिक हो जाए तो भगवान का नाम लूं, ऐसी रुचि बढ़ती। तो ऐसी शास्त्रों में बात आती है और संतों में भी कहीं कहीं देखने में आई है। एक सज्जन थे हमारे मित्र, वो नाम जप करते थे तो नाम जप में मन लगता तो नींद आती नहीं थी, रात्रि को लेटते डेढ़ दो घंटा लेटते, पर लेटने में भी नींद नहीं आती, नाम नहीं छूटता। और आश्चर्य जैसी बात उनकी मैंने सुनी, 3 घंटा में लग जाए भाई 3 लाख नाम ले जा, 6 घंटा में लाख नाम होता है, 6 घंटा में लाख नाम होता है, तो 24 घंटा में 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख 9 लाख 10 लाख नाम, 11, 12 और 13 लाख तक नाम जपते थे। अलग अपने डायरी में लिख रखा है आज इतना हुआ, आज इतना हुआ, आज इतना हुआ। तो ये बात बड़ी आश्चर्य की है, घंटा तो 24 ही होते हैं, इतना नाम उच्चारण कैसे हो। परंतु उन्होंने ऐसी बात कही, तो बात कही तो उन्होंने कोई प्रसिद्धि लोगों में तो की नहीं, बहुत स्नेह रखते थे मेरे साथ, इस बात ने मेरे से कहा तो कैसे होता है, तो उनकी बात तो मैंने सच्ची मान ली। और मेरे यूं वहम नहीं रहता है, जिस पर विश्वास होता है कि ये झूठ बोलता है, ऐसा वहम तो था नहीं। परंतु तो इसका ठीक समाधान हमारी एक पुस्तक देखने में आई, मनीषी की लोक यात्रा एक पुस्तक, उसमें एक योगी राज गंध वाले बाबा हुए, बड़े प्रसिद्ध थे, बनारस में आया करते थे, उनके शरीर से सुगंधी आया करते थे, शरीर में से रतन निकाल लेते थे, ऐसे बड़े चमत्कारी संत हुए, बड़े योगी थे। उनके एक शिष्य थे, उन्होंने कहा कि मेरा जप होता है तो जितनी देर में 10,000 जप होता है उतनी देर में आज कितना बताया याद नहीं हमें, इतना जप हो गया, समय उतना ही लगा। उन्होंने अपने गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने वो उत्तर दिया, उसमें लिखा कि जब भगवान के साथ में इसकी तल्लीनता हो जाती है उस समय में ये काल नहीं रहता है। ये जो प्रकृति का काल है जिस काल में सब लोग जा रहे हैं, बह रहे हैं, मौत आ रही है, ये काल नहीं रहता, इस काल से अतीत हो जाता है। इस वास्ते ये काल का मान हुआ नहीं रहता, ये काल तो दिखता है थोड़ा, और वो होता है दिव्य काल, तो उसमें भजन ऐसा हो जाता है। ऐसा उन्होंने कहा तो विचार आया कि वो बात ये ठीक दिखती है, जब तल्लीनता होती है तो ये काल बदल जाता है, आपका ये समय है ये बदल जाता है। ब्रह्म अग्नि तन बीच में मत कर काढ़े कोई, उलट काल को खात है हरिया गुरुगम हो। काल तो सबको खा जाता है, काल भक्ति सबको करे, पर हरिश्रण है डरपंत, भगवान के सुने काल भी डरता है। उपनिषदों में आता है मृत्यु वेशियों को शेषना, ये क्षत्रिय और वेशी है ब्राह्मण, ये तो जिस काल भगवान के ओदन बताए चावल है, खाने का भात है, और मौत है वो चटनी है, चटनी चटनी से लगा लगा खाते हैं उभय भवती ओदन, और ब्रह्म से क्षत्रिय से और मृत्यु जैसे उपशेषना, तो मौत खा जाती है सबको। वो मौत खाने वाला वही काल है, काल उदंड धरसाध देव विश्व तो अंत का वो काल, तो वो काल की भी दाल नहीं करती, काल से वो अतीत हो जाता है। अगर ही तो ये समय है, ये समय वहां नहीं रहता है, दिव्य समय आ जाता है, तो उसमें उसका भजन बनता है, तो भजन बहुत बढ़ जाता है। अब आप और हम विचार करें कि ये बात सच्ची है क्या, तो बिल्कुल सच्ची है। कि हम कैसे माने, जैसे आप भाई बहन जो सत्संग कर रहे हैं सुन रहे हैं, और कभी काम पड़ा होगा कथा सुनते सुनते नींद आ जाती, झपकी आती, इतने से झपकी आवे थोड़ी, उतने में कई काम कर चुके, कई जगह जा चुके, सपने में बड़ा लंबा समय हो गया, और इधर जग देते हैं 2-4 मिनट हुए, गाड़ी में देखो थोड़ा सा मिनट हुआ, और उसमें बहुत समय दिख जाता है। जब मनुष्य की एक नींद रूपी माया शक्ति है उसमें भी थोड़े समय में लंबा समय दिख जाए, तो भगवान की दिव्य शक्ति में थोड़े समय लंबा समय हो जाता क्या आश्चर्य है। इस युक्ति से हमारी बात जैसी की बात ठीक है, तो वो जो संसार के साथ संबंध टूटता है तो वो दिव्यता आती है, और संसार के साथ संबंध कैसे टूटता है, जब हम काम क्रोध लोभ के वशीभूत नहीं होते तो हमारा संबंध भगवान के साथ होता है, और काम क्रोध लोभ के साथ संबंध होता है तो हमारा संसार के साथ संबंध होता है। संसार के साथ जो कामना है इससे संबंध जुड़ा है। इस वास्ते गोस्वामी जी कहते हैं ये संग्रह और भोगों में रुचि लगी है, इस जगह है सुंदरता लेकर के जो काम कामी का मन आकर्षित होता है, तो सुंदरता तो भगवान श्री रघुनाथ जी महाराज की लगे हमें, और दाम इकट्ठा करने के लिए हमारा मन लगे वो लगे राम जी में, राम 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 नाम में। भोगों के कारण तो वहां सुंदरता से मन आकर्षित होता, सुंदरता में, और रुपयों के लिए संख्या में मन आकर्षित होता है। बहुत साफ नया गद्दी का नोट दें 10 रुपयों का, और एक पुराना नोट हो 100 रुपयों का, तो कह भाई कौन सा लोगे, तो 100 रुपये में लेंगे। अरे ये पुराना है, फट रहा है, ये तो टूट गया है, कुछ छड़ पड़ गया है, ये नया गड्डी का नोट है, और नया सुंदर बहुत लगता है, परंतु है 10 रुपयों का ही। तो पैसे के लोभ वाले को गिनती प्यारी लगती है, गिनती अधिक आनी चाहिए, समझे, चाहे सुंदर हो असुंदर हो, और संसार के भोगी काम ही नारी प्यारी जो सुंदरता देख रहा है, तो सुंदरता में मन अटकता है, वो सुंदरता तो भगवान की देख है,
और लोभ में लगे तो लोभ वो नाम गाले। तो ये असली जगह थी, अब इस जगह ने आकर के इस गंदी जगह ने रोक लिया। इस वास्ते संतों के पद में आता है कि माधो जी से मिलना कैसे हुई सबल बैरी बसे घट भीतर ये कनक कामिनी लोय। माधो जी से मिलना कैसे हुई, भगवान के मिलने में कैसे विलंब क्यों हो रहा है कि भगवान की जगह कनक कामिनी आकर बैठ गए। अब इस वास्ते वो आकर विराजमान हो गए, अब क्या करें, जगह तो उन्होंने रोक ली। तो इस जगह रुक गई तो गोस्वामी जी महाराज रामचरित वर्णन करके अंत में प्रार्थना करके हे रघुनाथ जी महाराज हमारे तो कामे नारे प्यारी जी में इसरे तो रघुनाथ प्यारे लगे और जैसे लोभी प्रिय जी में दाम प्यारे लगे ऐसे नाम राम नाम प्यारा लगे। तो रघुनाथ जी महाराज का रूप रूप और नाम इसमें राम 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 करते लग जाए तो संसार से हटावे तो खाना पूरी करनी पड़ेगी ना। तो उस जगह ये पूर्ति करने और निरंतर ये लग जाए बस बैठी है फिर ये पतन नहीं होगा, फंसावट नहीं होगी, नहीं तो संसार का सुंदर रूप दिखे कि हम भोग भोग ले तो भोग नहीं भोगेंगे किंतु भोग तुम्हारे को भोग लेंगे। भोगा न भुगता वह में वो भुगता, वो समझते हैं हमने भोग भोग लिए, भोग तो नए नए हो जाएंगे पर आप पुराने हो जाएंगे। तो भोगों को आपने नहीं भोगा, भोगों ने आपको भोग लिया, खा गए आपको। इस वास्ते दुनिया के जो जो हैं मजे हरगिज कम न होंगे, पर अफसोस यह है कि एक दिन हम न होंगे। तो संसार तो कम नहीं होगा और ये सही नहीं रहेगा। तो भोग भोगे भोगों ने आपको भोग लिया, खा गए तो उम्र खा गए आपकी, धन खा गए भोग, और धर्म दान पुण्य आदि को खा गए और नए नए पाप पैदा कर दिए। उस वास्ते भाई धन कमाओ पर तो न्याय युक्त, और वो भी कमाओ दान पुण्य के लिए, दूसरों के हित के लिए, सुख के लिए, क्योंकि यहाँ आए तब साथ में कौड़ियक लाए नहीं और जाएंगे तो कौड़ियक ले जाएंगे नहीं। तो यहाँ की चीज है यहाँ ही रहेगी, तो यहाँ जो मिली है वो चीज केवल उपकार के लिए मिली है, उपकार करो जितना कर लो और बाकी रहे तो अपने बाल बच्चों को भी सिखा दो कि बेटा इनसे उपकार करना है, ये साथ लाने की ले जाने की चीज नहीं है, ये तो यहाँ ही काम लेने की चीज है। और वो भी काम क्या, अपना तो निर्वाह मात्र और दूसरों के हित और सेवा के लिए जो आपको मिला है। सज्जनों क्या बताएं, मेरे मन में बहुत बात आती है, वो मैं अपनी भाप निकालता हूं, उबाल निकालता हूं। आप भाई बहनों को जो परिस्थिति मिली है, चाहे सुखदाई हो चाहे दुखदाई हो, अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, धनवत्ता हो चाहे निर्धनता हो, स्वस्थता हो चाहे बीमारी हो, आपकी जो मिली है जितना परिवार ज्यादा होता थोड़ा हो, उसी से ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। जिसकी प्राप्ति के बाद में और कुछ बाकी न रहे, उस तत्व की प्राप्ति अपनी प्राप्त परिस्थिति के उपयोग से हो जाएगी। सांसारिक वस्तुओं का मूल्य होता है उस वस्तु के अनुसार, इसके 100 रुपये तो 100 रुपये में मिलेंगे। परमात्मा का मूल्य ये नहीं है, परमात्मा का मूल्य क्या है, आपके पास में चीज है वो दे दो और प्रभु के पास की चीज ले लो, और अपने आप को दे दो और प्रभु को खुद को ले लो, इतना ही मूल्य है भगवान का। और इतना ही छोटा नहीं, बड़ा भारी हो गया, सर्वस्व दे दिया अपने आप को और सबको दे दिया, तो भगवान भी सर्वस्व दे देते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथे भजाम्यहम्, यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव, जैसे भजन करते हैं वैसे उनका भजन करता हूं। तो ये संसार की तरफ जो आकर्षण है ये खास बाधा है। संसार के मान में राजी होते हैं, अपमान में दुखी हो जाते हैं। सज्जनों, अगर सच्चे हृदय से परमात्मा को चाहते हैं तो अपमान में दुखी न हो गए, निंदा में कभी दुखी न हो गए, खूब निंदा करे, तिरस्कार करे, अपमान करे, उसमें राजी होना चाहिए कि अब भगवान के पास हम पहुंच रहे हैं, अब भगवान हमारे से प्यार कर रहे हैं, स्नेह कर रहे हैं, अपने पास खींच रहे हैं, क्योंकि संसार में हम आकर्षण है हमारा, उस आकर्षण से हम भगवान से दूर हो रहे हैं, तो वो आकर्षण हमारा भगवान कृपा करके मिटा रहे हैं। इस बात से निंदा में, तिरस्कार में, अपमान में, अभाव में, दुखों में घबरावे नहीं, किंतु संसार का इससे पता लगता है कि संसार क्या है। जिनके साथ उत्तम से उत्तम, अच्छे से अच्छा बर्ताव करें और वे भक्त पर निंदा करें, अपमान करें, बुरे से बुरा बर्ताव करें, उसमें प्रसन्न होना चाहिए कि बहुत कृपा हो गई भगवान की। बात उल्टी है, लोग चाहते हैं कि हमारा आदर करे, हमारी प्रशंसा करे, हमारे को सुख पहुंचावे, हमारी सेवा करे, तो सुख पहुंचाने वाले आपके पुण्यों का नाश करते हैं, दुख पहुंचाने वाले आपके पापों का नाश करते हैं, क्योंकि सुख पुण्य का फल है, तो सुख भोग लोगे उतना पुण्य खत्म हो जाएगा, और दुख है वो पापों का फल है, दुख भोग लोगे तो पाप खत्म हो जाएंगे। तो दुख देने वाले, कष्ट देने वाले, अपमान करने वाले, निंदा करने वाले, तिरस्कार करने वाले आपके पापों का नाश करके शुद्ध बना रहे हैं, निर्मल बना रहे हैं, इस वास्ते इसमें प्रसन्नता होनी चाहिए। और फिर आप सेवा ही करो फिर उनकी, क्योंकि आपका इतना उपकार किया, पापों का जिसने नाश किया, उसकी सेवा नहीं करोगे तो किसकी करोगे? आपकी सेवा के पात्र वे, उनको सुख कैसे मिले, उनको आराम कैसे मिले, उनका भला कैसे हो? प्रत्यक्ष में आपसे भला ले नहीं सकते, तो परोक्ष रीति से उनके लाभ पहुंचाओ, घर में कुछ धन पहुंचा दो और किसी से करो, उनका भला कैसे हो ये सोचो। इससे अंतकरण बहुत निर्मल होता है, परमात्मा के पास पहुंचने में बड़ी सहूलियत होती, बड़ी सुगमता से पहुंच सकती। परंतु ये होगा तब जो काम क्रोध लोभ के वशीभूत नहीं होंगे, तब। अब काम के वशीभूत हुए, लोभ के वशीभूत हुए तो ये बातें कैसे करेंगे हम? लोभ के वशीभूत हुए तो धन संग्रह करने की इच्छा होगी, कामना के वशीभूत हुए तो मान आदर सत्कार भोग सुख ये प्यारा लगेगा, और ये प्यारा लगेगा उतना हम संसार में फंसेंगे, और ये है नरकों का दरवाजा, और लगता है बड़ा अच्छा, तो नरकों से दूर जाना नहीं चाहते, मान नरकों में जाना चाहते हैं, इसका अर्थ ये हुआ। ऐसे क्रोध के वशीभूत होकर के नरकों में जा रहे हैं, काम के वशीभूत होकर तो व्यभिचार आदि के द्वारा नरकों में जाते हैं, और लोभ के द्वारा वशीभूत होते तो लोभ के द्वारा उनके लोभ के वशीभूत और उनके द्वारा जाते हैं, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात के द्वारा नरकों में जाते हैं, और क्रोध के द्वारा हिंसा मारपीट अनिष्ट करके दूसरों का अपने नरकों में जाते हैं। तो इनके बस में जो जो हो जाएंगे त्यों ही त्यों अनर्थ परंपरा ऐसी जागृत होगी जो उसे निकलना मुश्किल हो जाएगा। इस वास्ते इन तीन नरकों के दरवाजों से मुक्त होकर के और आत्मनिष्ठ आचरित अपने कल्याण का आचरण करता है तो वो मुक्ति को प्राप्त होता है। तो इनके वशीभूत मत हो, आवे ही नहीं बहुत बढ़िया बात, हर काम क्रोध लोभ आ जाए भाई भगत पर, क्योंकि पुरानी आदत पड़ी हुई है, स्वभाव पड़ा हुआ है, आ जाए तो आ जाए, तो कम से कम तयोर न भस्मागत चेत। भगवान ने कहा कि राग द्वेष व्यवस्थित हो, प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष आते हैं, मन काम और क्रोध, तयोर न भस्मागत चेत, इनके वशीभूत मत हो, इनके कहने में आकर काम में मत लग जाओ, कहने में आ गए तो नरकों में चले जाएंगे। तो आ जाए तो हे नाथ पुकार। एक अच्छे संत थे, उन्होंने ये बात कही कि ये काम आदि वृत्ति होती थी तो यहाँ तक कह दिया कि मैंने इसको काम में लेकर के देखा है, तुम भी पुकारो हे नाथ हे प्रभो पुकार। जैसे कोई डाकू आ जाए लूटने लगे तो जोर से चिल्लाता है, अरे बचाओ मेरे को मार रहे हैं लूट रहे हैं बचाओ बचाओ, तो कोई सुनेगा किसी को दया आ गई तो बचा देगा। ऐसे ही जब ये काम क्रोध लोभ आकर तुम्हारे को लूटने लगे हमला कर ले तो दूर करो, दूर न हो तो हे नाथ हे प्रभु पुकार, तो उस प्रभु की कृपा से बच जाओ। संतों ने कहा हमने करके देखा लाभ होता, तो चाहे तो अपने बल से दूर करो, और अपना बल न हो तो सुने भी मैंने निर्बल के बल राम, निर्बल के बल तो भगवान होते हैं, तो प्रभु को पुकारो, पर इनके वशीभूत मत हो, इनके कहने में आकर काम कर मत बैठो, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अभी मौका मिला है, ये थोड़ा सा तो समय ये हाथों से निकल जाएगा तो सिवाय रोने के कुछ हाथ रहेगा नहीं। तो ये संसार के साथ संबंध हमारा काम क्रोध लोभ से जुड़ा हुआ है, नरकों के साथ हमारा काम क्रोध लोभ से संबंध जुड़ा हुआ है, ये इनके दरवाजे में हम आ गए हैं, जो काम क्रोध लोभ के वशीभूत हो गए इनके कहने में आते हैं। मनुष्य काम करता है तो किस में प्रवृत्त होना चाहिए, किस में निवृत्त होना चाहिए, मानो कौन सा काम करना चाहिए कौन सा काम नहीं करना चाहिए, तो इसके पास में कसौटी रहती है कि हमारा स्वार्थ हो जाए सुख हो जाए लोभ हो जाए भोग मिल जाए वो काम करेंगे, और जिसमें हमारा स्वार्थ नहीं होगा वो नहीं करेंगे, तो ये कसौटी ठीक नहीं है, ये पतन करने वाली फंसाने वाली। तो तस्मात शास्त्र प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थित हो, अगर ही आता है ये तो 21 और 22 चलता है और वो 24वां श्लोक आता है, तस्मात शास्त्र प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थित हो ज्ञात्वा शास्त्र विधान उत्तम कर्म कर तुम हारे, शास्त्र को सामने रख करके सिद्धांत को सामने रख करके संत महापुरुषों के आदर्श चरित्र और उनकी आज्ञा को सामने रख करके और अपने काम करो, वे निषेध करे वो मत करो और वे जो आज्ञा देते वो करो, तो उनके अनुसार करने से हमारा रास्ता बड़ा ठीक होता है। इस वास्ते भागवत में भी आया है महाभारत में आया ऐसा निष्कंठ का पंथा यत्र संबुज्यते हरि, जहाँ भगवान का पूजन होता है ऐसा पंथा निष्कंठ का, ये रास्ता बिल्कुल शुद्ध है साफ है बिना कांटे कचरे ऐसा रास्ता है, तो भगवान की तरफ चलो। और संत महात्मा लोग कहते हैं वो हमारे कल्याण के लिए तो कहते हैं, दुनिया में स्वार्थ मिंत सकल जग माही सुपने उप्रभु परमार्थ नाही, सबके सब अपने स्वार्थ के लिए काम कहते हैं, माता पिता भाई सुहृद अनजान स्वार्थ साधते, ये अनजान होते हुए भी लौकिक स्वार्थ के लिए बात कहेंगे, तो सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक असुरारी, आप और आपके सेवक हैं वे बिना स्वार्थ के केवल जीव के हित के लिए बात करते हैं, सबका हित कैसे हो सबका कल्याण कैसे हो, तो उनकी बातों की तरफ ध्यान दो, वे अपना कल्याण करने वाले हैं, तो वे भगवान हैं, वास्तव में तो भगवान ही है, भगवान के कोई प्यारे भगत हो कहीं तो बात एक अलग है, नहीं तो उमा राम सम हितु जग माही गुरु पितु मातु बंधु कौ न, भगवान के समान हमारा हित करने वाला कोई नहीं है, तो भगवत वाणी है उसका आश्रय लो, गीता रामायण आदि ग्रंथ उनका आश्रय लो, उनके अनुसार अपना जीवन बनाओ। सज्जनों जीवन जा रहा है, मौत बड़ी तेजी से आ रही है, आप चाहे बात करें चाहे आप नींद लें चाहे आप काम धंधा करें, आप तो काम बदलते हैं परंतु काल बदलता नहीं है, ये तो हरदम आपकी आयु को खत्म कर रहा है, निरंतर एक ही काम इस वक्त एक ही ये खत्म कर रहा, आप याद रखें न रखें परंतु ये काल याद रखता है ये भूलता नहीं है। लाखों करोड़ों आदमियों को आपने देखा होगा, आपके शहर में बहुत आदमी है, इन आदमियों में कोई काल की भूल में रहा हुआ 100, 200, 500, 1000 वर्ष का कोई आदमी देखने में आया, क्योंकि बड़े बड़े काम होते हैं उसमें कोई न कोई भूल हो ही जाती, तो ऐसे भूल हो जाए कोई बैठा हो ये भूल नहीं होती, इस बार सावधान होने वालों में काल मेरा स्वरूप है, एकादश स्कंद में विभूति आती है। ये बड़ा सावधान रहता है हरदम, ये देखता रहता है आयु समाप्त होती चलो उसी दम चलना पड़ेगा। राजा रंग फकीर संतदास संसार में बड़ो कसाई काल और राजा गिरेन्द्र बादशाह बूढ़ो गिरेन्द्र वाल सबको ले जाता है। तो ये समय आने पर जाना पड़ेगा भाई, ये अभी अभी आप और हम बात कर रहे हैं सुन रहे हैं बैठे हैं, तो समय आने पर सच जाना पड़ेगा, उसमें बहानाबाजी चलेगी नहीं, कोई बात चलेगी नहीं, क्यों समय आ गया अब जाना पड़ेगा। तो इस बात से वो समय सज्जनों प्रतिक्षण नजीक आ रहा है, जिस दिन जाना है वो जाने का समय नजीक आ रहा है। आप हम आकर के बैठे उस समय हमारी जितनी उम्र थी सबकी सब उम्र इतना मिनट आधा घंटा ऊपर हो गया, ये हमारा समय बीत गया, इतने खत्म हो चुके हैं, इतनी मौत नजीक आ गई इसमें कोई संदेह नहीं, बाकी कितना समय है इसका पता नहीं, पर जितना खत्म हो गया इसमें संदेह नहीं। आज दिन देखते वर्ष आ गए, इतने वर्ष असली हमारे जीवन में से खत्म हो गए नहीं है, हो रहे प्रतिक्षण। बड़ी सावधानी से भगवान के चिंतन में भजन में जप में लगे जाओ, इतना हमारे पास समय कहाँ जो दूजी बात करे, ताश को ऊपर खेलो तमाशा देखो यार हल्ला करो, आप उसमें विनोद करते हैं क्या सुख है, अरे राम 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 राम, सत्यानाश हो रहा है, इधर आयु खत्म हो रही है और इधर राजी हो रहे हैं खुशी हो रहे हैं, घर के आग लगा करके प्रकाश देखते हैं कि देखो प्रकाश कैसा हो गया, अंधेरा मिट गया, अरे इधर अंधेरा हो गया सब घर में आग लग गई, आग ऐसी उम्र में तो आग लगी है, इधर खुशियां मनाते हैं आनंद मनाते हैं। एक राजा ने पागल खाना बनाया था शहर से बाहर और पागलों को वहां रखे थे, मकान बनाए हुए थे काठ के, तो वहां प्रकाश नहीं करते थे कि दीपक लगा देंगे बिजली लगा देंगे जल जाएंगे पागल है, तो किसी पागल के हाथ में लगी दिया सलाई, उसने ले जाकर ऊपर लगा दी आग और बाहर से सब दीवार बंद कर दिया कि कोई किसी को मत आने दो। अब लगी आग लगे नाचने कहा हाँ आज प्रकाश हुआ, देखो देखो कितना प्रकाश है, हाथ की रेखा रेखा दिखती ऐसा प्रकाश हुआ। अब वो जोर से चले जो ही नाचने लगे और खुशी आने लगी कि बस बहुत प्रकाश हो गया हमारा तो आनंद हो गया। वो महाराज मरनार दा क्रिया दो करनी नहीं पड़ी, एक साथ ही हो गई, मकान के साथ ही जल गया सब के सब। ऐसे लोग उम्र जो है तो आग लगी है, इधर विनोद करते हैं खुशी मनाते हैं आनंद मनाते हैं खुशी मनाते हैं, अरे कर क्या रहे हो, आग लगी है खत्म हो रहे हो, अभी राम नाम सत्य बोल जाएगी खत्म हो जाएगा सब गुण गोबर हो जाएगा, ये कुछ मनोराज किया है जो कुछ नहीं होगा वो आ रहा है, अरे उसमें देरी नहीं होगी उसमें गफलत नहीं होगी, वो तो जरूर आएगा ही। कोई राजा महाराजा कोई साधु संत कोई विरक्त त्यागी रागी भोगी कोई नहीं टाल सकता, उन सब के आ जाए सबके सामने आए, राजा रंग फकीर सबको आने वाला है, वो आ रहा है मेरा और इधर ख्याल ही नहीं है। जो असली ध्यान देना चाहिए था ये मनुष्य को जो मनुष्य ध्यान ही नहीं देता है, जान जान करके प्रमाद में लग रहा है भोगों में लग रहा है, इतना धन कमा लेंगे इतना ये कर लेंगे इतना ये कर लेंगे, करिष्यामि 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 इति चिंतया मरिष्यामि 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 इति विस्मृतम्, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, अरे करेंगे करेंगे पर मरेंगे तो, अरे मरेंगे जरूर करेंगे में संदेह है, करेंगे में तो संदेह करेंगे कि नहीं भी करेंगे, हर एक काम में योज हो जाए करेंगे नहीं भी कर सकते भाई, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जाओगे जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते हैं, परंतु ये कह सकते हैं कि मरेंगे नहीं भी मर सकते, इसमें नहीं भी नहीं है, ये जरूर मरना पड़ेगा अवश्यम यातार स्थिर तर मुषित्वाभिषया वियोगे को जाति न जनो यार स्वयमो बृजंत स्वातंत्र दतुल परितापाय मनस स्वयं त्यक्ता हे ते समसुखमनंत विदधति। अवश्यम याता राष्ट्र तरमुषित्वा विषया। ये पदार्थ भोग व्यक्तियां जो अनुकूल सामग्री मिली है एक दिन न जाएगी जाएगी जाएगी, कोई रख न सकता, राजा महाराजा कोई भी नहीं रख सकता, किसी धनी मानी के हाथ की बात नहीं जो इनको बनाए रख ले। आज दिन तक कोई रख नहीं सका है तो अब रख लेंगे, अवश्य याद आ रहा है जरूर जाएगा। तो अवश्य वियोग होगा ही, तो भाई पहले से ही वियोग क्यों नहीं कर लें, पहले से ही इनकी जो राग आसक्ति है, राग है, कामना है, लोभ है, इसका त्याग कर दें। त्याग नहीं कहता कि आप कोई बाबा जी बन जाओ दूसरे चले जाओ, बाबा जी बनने से कल्याण नहीं होता है, मेरे से पूछ लेना सच्ची बात। केवल वेश बदलने से रंग डालने से काम नहीं होता है। अरे भाई मन में रंगिया था, रंगिया कपड़ा, अरे कपड़े के ऊपर रंग चढ़ा दिया, मन पर चढ़ाया है कि नहीं, उस पर रंग नहीं चढ़ा तो कुछ नहीं, कोरा कुछ नहीं। बाहर के स्वागत हो रावण बन गया संत, जिसके ठगने में आ गई महाराज जगत जननी जानकी जी, इतना संत बन गया। सब पूरा पैर कर भरा पूरा गुसाई, सिर जटा जोगी ने नव नव हाथ बढ़ाई, बढ़ा जोगी बन गया। पर तो क्या संत हो गया क्या वो? भैया मन नहीं रहेंगे कुछ नहीं, और मन में ये बहना भाई गृहस्थ में बैठे हैं, बाल बच्चों का पालन कर रहे हैं, पर मन भगवान में लगा है, तल्लीन उर हो रहे हैं, वे संत है। संत चाहे बाहर से दिखे चाहे न दिखे, साधु हो गए भगवान में लगे वे संत है। जो प्रभु में लग जाए, ये काम क्रोध लोग ये मन में है ये नहीं गए हैं, तब तो बाद बंधन है, इसको छोड़ दिया, इससे दूर हो गए। ए तेरी विमुखता कौन दे तमो द्वारे त्रिभिर नर आकृति आत्मनस्ते, फिर अपना कल्याण करता है तो परम गति को प्राप्त होता है। तो भर्तृहरि कह रहे हैं कि अवश्य याद आ रहा है, जरूर इनका वियोग होगा। तो वियोग चाहे हम मौत आने पर वियोग कर, प्रेम तजे तो ये काम क्रोध लोभ के त्यागने से होगा। इनके वशीभूत और काम करोगे तो महाराज त्याग नहीं कर सकते, ये अवगुण है, ये है अवगुण। डाकू और चोर होते हैं, इनसे तो पाला नहीं पड़े तो बढ़िया है, पाला पड़ने पर छूटना मुश्किल हो जाता है। शुभ काम जितने गए दया क्षमा उदारता करके जो अच्छे आचरण करते हो, वे आचरण तो आपकी कामना से बांधेंगे, और कामना छोड़ करके और भगवत प्रीत्यर्थ अगर दया क्षमा उदारता संतोष त्याग वैराग्य आदि देवी संपत्ति आप करोगे तो वो आपका कल्याण कर देगी, उद्धार कर देगी देवी संपत्ति। दुष्ट पुरुष होते हैं वो जबरदस्ती करते हैं, श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वे तो महाराज आप गर्ज करो तो वे संबंध जोड़ेंगे, नहीं तो बिल्कुल निर्लेप। ऐसे सदगुण सदाचार जितने वे बांधने वाले नहीं है, ये दुर्गुण दुराचार है महान बांधने वाले, और उनका दरवाजा है ये तमो द्वारे स्त्रीवीण, तीन दरवाजे बताया काम क्रोध लोभ। तो शुभ भोग ले और संग्रह कर ले, और कोई बाधा दे तो शुभ मार डालेंगे, अशुभ मया हत शत्रु निश्चय चाप रही, और कोई मार दूंगा ऐसे कर दूंगा नष्ट कर दूंगा। तो ये क्या है, काम क्रोध परायण, काम और क्रोध के परायण हो गए। वो काम के दो भेद बता दिए, लोभ एक दो भोग भोगने का और एक संग्रह करने का, ये काम है। इधर फंस गए तो ऐसे विमुक्ता कौन दे, इनसे विमुक्त होना पड़ेगा, रहित होना पड़ेगा। कहते महाराज रहित होना बड़ा मुश्किल है, हमारी तो आदत पड़ी हुई है छूटता नहीं। कहते छूटता नहीं वो इतना दोष नहीं है जितना छोड़ना चाहते नहीं, ये दोष है। सत्य हृदय से चाहते हैं कि ये छूटे, ऐसी चाहना हो जाएगी तो आपकी मदद करने के लिए धर्म तैयार है, संत तैयार है, भगवान तैयार है, शास्त्र तैयार है, सब लोग तैयार है। सच्चे हृदय से त्याग करता है तो सब लोग आदर करेंगे, आपकी मदद करेंगे। पर तो आप रखना चाहते हो तो भाई मदद कौन करे,
जब आप छोड़ना ही नहीं चाहते तो इस वास्ते ये फिर विमुखता कौन थे या तमो द्वारे स्त्री फिर नरा इनसे विमुक्त हो जाए फिर आचरण आत्मन श्रेय आचरती। इसका अर्थ ऐसा न समझना कि इनसे सर्वथा छूटने के बाद भजन करेंगे, आया तो ऐसा है। एतेर विमुक्त कौन्ते तमो द्वारे स्त्री भीर न रह फिर आचरति आत्मन श्रेय ततो जाति परांगति। ऐसी प्रतीक्षा मत करना कि छूटेंगे तब राम राम करेंगे भजन करेंगे। आप भजन शुरू कर दें, अभी से ही शुरू कर दें, भगवान के नाम का जप कर दें शुरू, कीर्तन शुरू कर दें, जितने शुभ काम वो शुरू कर दें और इनसे छूटने के लिए प्रयत्न करते रहें। जो जो छूटते रहेंगे तो वो दूर छूटेंगे और भगवान का सहारा लेंगे तो भगवान का बल मिलेगा तो छूटने में बड़ी मदद मिलेगी। और ये जहां जहां छूटते चले जाएंगे क्यों ही भजन असली शुद्ध भजन होने लगेगा। इस वास्ते एक एक की मददगार है। आचरह आचरह श्रेय आचरति, श्रेय का जो आचरण करना है वो शुरू करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ और संसार की निंदा से डरो मत, अपमान से डरो मत, दुखों से भी डरो मत, प्रतिकूल परिस्थिति से डरो मत, घबराओ मत। अच्छे जितने पुरुष हुए उनके सामने दुख आया है, कष्ट आया है और कष्ट में ही वे उन्नत हुए, बड़े श्रेष्ठ पुरुष बने। इस वास्ते जब आफत आ जाए अच्छा काम करते करते निंदा हो जाए, हम त्याग करते हैं त्याग करने से भी निंदा होती है, तो मन में प्रसन्न होना चाहिए कि भगवान की डबल कृपा हो रही है, दुगुनी कृपा हो रही है। आप भला करते हैं, बाल बच्चों का पालन पोषण करते हैं, भाई संबंधी कुटुंबियों का, माँ बाप का, बड़ों का आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, सेवा करते हैं, भी आपसे द्वेष करे दुख पहुंचावे तो बड़ी खुशी मनानी चाहिए कि बहुत मौज हो रही है। दो तरह से लाभ हो रहा है, एक तो हम सेवा करने से लाभ हो रहा है, अरे भी निंदा करते हैं, तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, इससे हमारा लाभ होता है, पुराने पाप नष्ट होते हैं, नई शुद्धि हो रही है। इस बार संसार की अनुकूलता है वो तो है फंसाने वाली और संसार की प्रतिकूलता है ये महाराज उद्धार करने वाली चीज है। इस वास्ते अपने इच्छा मत रखो अनुकूलता की, अनुकूलता की इच्छा उसका नाम ही काम है, उसका नाम ही काम है। जो हमारे अनुकूल बन जाए, हमारे बेटा पोता सब भाई बंधु कुटुंब भी हमारे अनुकूल बने रहे, ये इच्छा है फंसाने वाली है। और इच्छा से अनुकूल बने रहेंगे ये बात है नहीं, इच्छा के कारण से ये सुख बना रहेगा और इच्छा नहीं रखेंगे तो ये सुख नहीं रहेगा, ऐसा कभी भूल करके मत जानना। लोगों की जची हुई है कि पदार्थों की इच्छा नहीं करे तो हमारे पदार्थ कैसे मिलेंगे, हमारा कल्याण हमारा निर्वाह कैसे होगा, तो इच्छा मात्र से पदार्थ नहीं मिलते। अगर इच्छा से मिलते तो निर्धन कोई रहता ही नहीं, क्यों रहते हैं निर्धन जब इच्छा से ही मिले, इच्छा से नहीं मिलता है। उद्योग करो, पुरुषार्थ करो और उसके साथ भाग्य होगा मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा भाई। परंतु इसके पुरुषार्थ करने की तो शास्त्र की आज्ञा आती है, पर मंदिर में चित्त अगर इच्छा करे उससे मिल जाए, इच्छा से भगवान मिलते हैं, क्योंकि भगवान हमारे पास है। केवल विमुखता हुई है उसकी इच्छा न करने से और संसार की सन्मुखता हो गई है इच्छा करने से, तो इच्छा करने से संसार मिलेगा नहीं, भागेगा ये तो अगाड़ी, ये माया छाया है, छाया होती है उसको पकड़ना चाहे कोई बड़े जोर से कूद करके पकड़ना चाहे तो छाया अगर भाग जाएगी, और सूर्य भगवान को पीठ दे अगर भागेगा तो छाया पकड़ में नहीं आएगी, और छाया को पीठ देगी सूर्य भगवान के सामने चलेगा तो छाया दौड़ी चली आएगी पीछे। ऐसे प्रकाश की तरफ चलोगे तो संसार के भोग और पदार्थ लालायत हो जाएंगे आपकी सेवा में आने के लिए, और आप उनको चाहोगे तो वे पकड़ में आएंगे नहीं कभी। भगवान को तो आपने पीठ दे दी और वे आपको पीठ दिए भागेंगे, रोते फिरोगे, और भगवान की तरफ सन्मुख होकर के चलोगे तो वे महाराज आपके लिए लालायत होंगे, सफल होने के लिए, माया भी सफल होने के लिए भागेगी आवेगी। बट अब उसी मतलब नहीं, अब उसे मतलब ही नहीं, अब तो हम भगवान की तरफ चले, हमारी क्या जरूरत है। अब ऐसे मैंने देखे आदमियों को, एक सज्जन थे तो वो कांग्रेस में लग गए, कोई 50-55 वर्ष की बात है, तो वो कांग्रेस में लग गए तो वो लगे तो क्या, हम तो खद्दर पहनेंगे,
तो खद्दरी पहनने लगे। अब बढ़िया वैसे स्वेटर और बढ़िया कपड़ा आने लगा। कहते हम पहले चाहते थे तो आता ही नहीं, अब नहीं लेता आता, हम अब क्या करें, हम तो लेते नहीं। अब तो चाहने पर नहीं आता है, न चाहने पर आता है, ऐसा देखा। संसार के पदार्थ है, चाहने पर नहीं आते हैं, मांगते फिरते हैं। कहते हैं धनी ओ भाई ओ सेठ, जरा कृपा हो जाए, ओ भगत 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 भगत, टिकता ही नहीं नजी, टिकता ही नहीं। तो मांगने से कोई आता है, पर बहम है कि मांगने से मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं भाई। आना है तो वो आ जाएगा आपसे, आप ही नहीं आना है तो नहीं आएगा। हाँ, उद्योग करना, पुरुषार्थ करना, निकम्मा नहीं रहना। गृहस्थ आश्रम है तो भाई गृहस्थ आश्रम के शुरू काम करो, जाति वर्ण जो है उसके अनुसार अपनी चेष्टा करो। साधु के लिए भी कहना भिक्षा को चले गए, अपने संगत बिना किए घरों में चले गए, मिल गया तो मौज। इस वास्ते दत्तात्रेय का दुष्ट भुक्त तुष्ट धीरहम, जो मिल जाए उसमें बस वो जो भाग्य से मिला खा लेता हूँ, और तुष्ट धीरहम तुष्ट रहता हूँ, मस्त हो रहा हूँ, बहुत आनंद हो रहा है हमारे, जो मिल गया अच्छी बात है। तो इस वास्ते उद्योग करना, साधु के लिए भी वो उद्योग अलग अलग है, गृहस्थ के लिए अलग अलग है, परंतु उद्योग करने के लिए मना नहीं है, किंतु लोभ करने के लिए मना नहीं है। लोभ और क्रोध और काम ये नरकों के।
Ramas सीताराम राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम 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 सीताराम राम राम श्री राम 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 सीताराम श्याम